મહાબંધ પુસ્તક છઠવી લેક્ચર નંબર 6 ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવર્છાયાણં નમો લોએ સવસાહું ભૂતબલી પ્રણીતં તં બંધતત્વ પ્રકાશકં મહાધવલ વિખ્યાતં મહાબંધમ નમામ્યહં. આચાર્ય શ્રી ભૂતબલી ભટ્ટારક પ્રણીત એહ મહાબંધ નામ કા સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર હૈ જો ષટખંડાકમ કા 6 નંબર કા ખંડ હૈ. ઇસમેં ચતુર્થ પ્રદેશ બંધ અધિકાર કો દેખતે હુએ હમ અભી છઠવે પુસ્તક કે પૃષ્ઠ સંખ્યા 28 પર આ ગયે. 28 હમ યહાં જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કે સ્વામિત્વ કી બાત દેખ રહી તે માર્ગણાઓ મેં ઓર અભી હમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ મેં દેખેંગે. તો ઉપશમ સમ્યક્ત્વ મેં યહાં જઘન્ય કી બાત હૈ ને? હા, તો અધિક સે અધિક જહાં કર્મ બનતે વહાં જઘન્ય હોગા. ઉપશમ સમ્યક્ત્વ મેં ઉપપાદ હો સકતા હૈ ક્યા? પહેલે યે ભી નક્કી કરના. દ્વિતીય ઉપશમ મેં હોગા તો ઉસકે જઘન્ય હોગા, હે ને? તો કહેતે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ મેં સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ જો અન્યતર પ્રથમ સમયવર્તી દેવ, એ દ્વિતીય ઉપશમ સહિત દેવ મેં ઉત્પન્ન હોને વાલા લેના, મરણી નહીં હૈ પ્રથમ ઉપશમ મેં, તો જઘન્ય યોગ વાલા હૈ વહ સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી હૈ. સાસાધન સમય દૃષ્ટિ જીવો મેં સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ જો અન્યતર તીન ગતિઓ કા જીવ પ્રથમ સમયવર્તી તદભવસ્થ, ઇસમે ભી ઉપપાદ લેના. તીન ગતિ કા ક્યું લિયા? ક્યોંકિ સાસાધન કે સાથ મરકર કોઈ નરક મેં નહીં જાતા, ઇસલિયે તીન ગતિઓ કા જીવ પ્રથમ સમયવર્તી તદભવસ્થ ઓર જઘન્ય યોગ મેં વિદ્યમાન હૈ વહ ઉક્ત સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી હૈ. અભી સાસન મેં હી આયુ કર્મ કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી ગોલમાન જઘન્ય યોગ વાલા જીવ હૈ. ગોલમાન એને પરિણામ યોગસ્થાન લેના. સમ્યક મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવો મેં યહાં તો કોઈ મરતા નહીં હૈ તો ઉપપાદ યોગ કા સવાલ નહીં હૈ, તો પરિણામ યોગ હી હોગી. તો સમ્યક મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવો મેં સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ જો અન્યતર ચારો ગતિઓ કા જીવ ઘોલમાન જઘન્ય યોગ મેં અવસ્થિત હૈ. વો લ રહે ગયા બીચ મેં, વહ સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી હૈ. પરિણામ યોગ મેં હોતે હુએ ભી આયુ કા બંધ નહીં હૈ, ઇસલિયે સાત કા સ્વામી વો સાત કા બંધક વાલા હી હો. સંગીઓ મેં એને સંગી માર્ગણા મેં સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ? અભી યહાં હમકો ઉપપાદ યોગ લેના હૈ, પરંતુ અસંગી સે આયા હુઆ લે લેના યહાં. જો અન્યતર સંગી મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ પ્રથમ સમયવર્તી, એ ભી સંગી મેં ભી અપર્યાપ્ત લેના, લબ્ધિ અપર્યાપ્ત વાલા, ક્યોંકિ ઉસકા યોગ જઘન્ય હોગા. તો જો અન્યતર સંગી મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ પ્રથમ સમયવર્તી તદભવસ્થ ઓર જઘન્ય યોગ વાલા હૈ વો ઉક્ત સાત કર્મો કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી હૈ. આયુ કર્મ કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી કૌન હૈ? જો અન્યતર જીવ શુલ્લક ભાવ ગ્રહણ કે, યહાં પર ભી સંગી લબ્ધિ અપર્યાપ્ત લેના, તૃતીય ભાગ કે પ્રથમ સમય મેં વિદ્યમાન હૈ ઓર જઘન્ય યોગ વાલા હૈ વો આયુ કર્મ કે જઘન્ય પ્રદેશ બંધ કા સ્વામી હૈ. क्योंकि संगी कहने से उसमें संगी पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ गए। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ, यानी हमने उत्कृष्ट के भी स्वामित्व की चर्चा की और जघन्य के भी स्वामित्व की चर्चा की। अब यहाँ काल प्ररूपणा, प्रदेश बंध का यह 13वां अनुयोग द्वार है। यहाँ काल का अर्थ होता है एक जीव की अपेक्षा काल। अभी काल में कैसे लेंगे, जैसे उत्कृष्ट प्रदेश बंध किया तो लगातार कितने समय तक होगा और जघन्य लगातार कितने समय तक होगा, उसको कहेंगे काल। मिनिमम तो एक समय होता ही होता है, अधिक से अधिक कितने समय तक होगा। तो काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का कितना काल है, यह हमको स्वामी भी देखना है। वो तो सूक्ष्म संप्रदाय वाला था। जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय। ये दो समय कैसे निकालना है, तो कोई भी जो हमने देखे थे ना, हमने योग के स्थान जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक लिखेंगे तो उसके लगातार रहने का काल दो समय से ज्यादा नहीं होता। और योग यौ मध्य में 8 समय तक रह सकते थे और जघन्य में, जघन्य जो योग स्थान था वो तो 4 समय था। तो छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का कितना काल है, तो जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध के 3 भंग है, क्योंकि जो कभी सूक्ष्म सांप्रदाय तक पहुंचेगा ही नहीं उसका क्या भंग होगा अनुत्कृष्ट के लिए। हाँ, यानी एक समय से लेकर कितना हो गया, वो अनंत काल होगा। तो उसमें से जो सादी शांत भंग है, 3 भंग कौन से हो गए, एक अनादि शांत, एक अनादि अनंत और एक सादी शांत। अनादि अनंत अभवियों के लिए कहेंगे हम, अनादि शांत जो 10वें में पहुंचकर उत्कृष्ट करेगा उसके लिए वो अनादि शांत होगा। सादी शांत ने एक बार उत्कृष्ट किया है, फिर अनुत्कृष्ट करके फिर उत्कृष्ट किया, तो उसी गुण स्थान में रहते हुए 10वें में एक समय के लिए उत्कृष्ट किया, फिर एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया, फिर दूसरे तीसरे समय में उत्कृष्ट किया, ऐसा हो सकता है। एक समय का भी अंतर पड़ सकता है। तो कहते जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि उपशम श्रेणी उसके 2 बार उपशम श्रेणी का अंतर यह है ना, उतरते में नहीं लेना। हाँ वही मुझे लगा आप उतरने वाले की गए, यानी उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है एक बार और हमने देखा ना उसका जो रहने का काल मोक्ष, वहां से मोक्ष का काल कितना है, कुछ कम अर्ध पुद्गल। तो फिर उसने अर्ध पुद्गल परार्दन के अंतर में क्षपक श्रेणी चढ़ी और उसने उत्कृष्ट किया, तो अनुत्कृष्ट का काल, उत्कृष्ट का जो अंतर है वो अनुत्कृष्ट का काल है, इसलिए कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का कितना काल है, जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय। यह अंतर की बात नहीं हो रही, काल की बात हो रही। तो मोहनीय के लिए उसको मिथ्या दृष्टि होना या सम्य दृष्टि होना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, परंतु 7 कर्मों का बंध करने वाला लेना था। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय, 2 उत्कृष्ट के बीच, और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योग वाले के होगा और उत्कृष्ट योग संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों के होगा, और वह जीव एक में चला गया तो इतने अनंत काल तक तो अनुत्कृष्ट ही करता रहेगा। इसलिए अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अनंत काल बताया जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय, सभी के लिए उत्कृष्ट के लिए 2 समय लिया। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, तो आयु बंध का जो अंतर्मूर्त है वो काल अनुत्कृष्ट का ही है। आयु कर्म का अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार सदृश काल है, इतनी विशेषता है कि आहारक मिश्र का योगी जीवों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्योंकि आहारक मिश्र काय में योग उत्कृष्ट कब होता है, तो अंतिम समय में, और वहां उसका आयु का बंध स्वीकार है, तो एक समय के लिए उसने उत्कृष्ट किया। अब विशेषार्थ, सब कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योग के सद्भाव में होता है। ये उन्होंने अनाहारक मार्गना क्यों लिखी, आहार मार्गना क्यों नहीं ली? वो आहारक और अनाहारक का डिफरेंस, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आहार और अनाहार ऐसा होता है ना, इसलिए उन्होंने लिखा वो अनाहार। विशेषार्थ, वैसे अनाहारकों में तो आयु कर्म बनता ही नहीं, सब कर्मों का, अभी विशेषार्थ पढ़ रहे, सब कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उत्कृष्ट योग के सद्भाव में होता है, और उत्कृष्ट योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। इसलिए यहाँ ओग से आठों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। हाँ, स्वामित्व जुदे जुदे है। यह संभव है कि अनुत्कृष्ट योग एक समय तक हो, यानी दो उत्कृष्ट के बीच में, और अनुत्कृष्ट योग के सद्भाव में उत्कृष्ट प्रदेश बंध संभव नहीं, इसलिए ओग से आठों कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय, यानी दो बार उत्कृष्ट के बीच में। एक उसने एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया। अब शेष रहा, बीच में आवाज काहे की आती पता नहीं, आठों कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल। सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, मुनि और आयु कर्म के सिवा छह कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध उपशम श्रेणी में या क्षपक श्रेणी में होता है, अन्यत्र इनका अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध ही होता है। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध के काल की अपेक्षा तीन भंग संभव है, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। अनादि अनंत भंग अभव्यों के होता है, यानी अनादि से अनुत्कृष्ट कर रहा था वो तो कभी तो सम्यक तो भी नहीं प्राप्त करेगा, तो श्रेणी की तो बात ही कहा, तो अनादि अनंत हो जाता है। अनादि शांत भंग, जो भव्य एक बार उत्कृष्ट प्रदेश बंद करके मुक्ति के पात्र होते हैं उनके होता है, और सादि शांत भंग उन भव्यों के होता है जो एकाधिक बार उत्कृष्ट प्रदेश बंद करते हैं, एकाधिक बार यानी एक से अधिक बार, क्योंकि शादी है और उसको शांत भी करना है। इसका तो हम पूर्व में ही स्पष्टीकरण कराए हैं, इन कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, इसका उत्कृष्ट काल जो कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाया है, सो उसका कारण यह है कि किसी जीव ने अर्धपुद्गल परिवर्तन के प्रारंभ में और अंत में उत्कृष्ट प्रदेश बंध किया, और मध्य में वह अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध करता रहा, क्योंकि मूल प्रकृति है ना हमको, वो तो सब बंद ही रही है। इसलिए अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है। मुनि का उत्कृष्ट प्रदेश बंध संगी जीव करता है, और संगी का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यानी एक इंद्रिय आदि में चला गया तो संगी में रहने का, उसका संगी मार्गना का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल अनंत काल कहा है, वो की अपेक्षा बता रहे हैं ना हम यहाँ पर। आयु कर्म का बंध अंतर्मूर्त काल तक ही होता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। आयु कर्म का सब मार्गनाओं में ओग के समान ही काल है, यह स्पष्ट ही है। मैंने उत्कृष्ट का काल कितना देखा था, एक समय से दो समय, अनुत्कृष्ट का काल एक समय से अंतर्मुख। मात्र आहारक मिश्र का योग में उत्कृष्ट प्रदेश बंध जो अनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा उसके होता है। इसलिए इसके आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। आप कहेंगे एक समय तो मनोयोगी वगैरह में भी घटित होगा, हाँ, परंतु वो तो दो समय भी तो घटित हो सकता है, इसलिए वहां ये बात लागू नहीं होती। नारकियों में और बाकी वैकृत मिश्र जो निवृत्ति पर्याप्त है और औदारिक मिश्र निवृत्ति पर्याप्त है, उसके तो आयु का बंध होता नहीं है। इसलिए जो मिश्र कायोग में शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा नेक समय में, वहां पर योग ज्यादा है मैक्सिमम, उसकी बात केवल आहार मिश्र में लागू होगी। समझ में आई ना बात? अब नारकियों में, मार्गणाओं में अभी हम देखेंगे। मार्गणाओं में हमको काल देखना है, है? सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय। उत्कृष्ट में तो कोई अंतर नहीं पड़, अंतर है ना, डिफरेंस नहीं होगा, एक या दो समय सब जगह होगा। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, यानी उतने उत्कृष्ट किया ही नहीं, उत्कृष्ट का अंतर नहीं लेना, उत्कृष्ट किया ही नहीं, थ्रू आउट उसको अनुत्कृष्ट ही रहा। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए। मात्र अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, यानी जिस नरक का जो उत्कृष्ट, जो वहां की जो आयु है, जिसको हम भव स्थिति कहेंगे, पहले पृथ्वी के लिए, दूसरी पृथ्वी के लिए, अपना अपना जो काल है उसका, उसको समझना चाहिए। अब तीर्यंचों में उत्कृष्ट की मांग वैसे तो आसान है, तीर्यंचों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओघ के समान है, यानी एक से दो समय। तीर्यंचों में भी स्वामित्व कौन देखा था हमने, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है जो सात कर्मों का बंध कर रहा है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनंत काल प्रमाण है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है, क्योंकि तीर्यंच है ना, अब वो संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट करेगा और वो एक केंद्र में गया, वो तीर्यंच का तीर्यंच ही रहा, फिर उसने लगातार अनुत्कृष्ट ही बंद किया, जब फिर से संगी होकर उत्कृष्ट करेगा तब तक उसका अनुत्कृष्ट ही चलता रहेगा, इसलिए अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अनंत काल बताया जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बराबर है। इसी प्रकार सामान्य तीर्यंचों के समान, यानी जहां संगी भी होते हैं जीव और एक इंद्रियादि भी होते हैं, ऐसी कौन कौन सी मार्गना है, तो कहते हैं नपुसक वेदी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, क्योंकि असंयत में पहले से चौथे गुण स्थान तक के आ गए, तो संगी जो मिथ्या दृष्टि है एक इंद्रिय में चला गया है तो अनंत काल वहां रहेगा। अचक्षुदर्शनी, क्योंकि अचक्षुदर्शनी कहने से एक इंद्रिय भी आ गए, पंचेंद्रिय भी आ गए, क्योंकि अचक्षु दर्शन तो अनादि से लेकर बारहवें के अंत तक पाया जाता है। भव्य अभव्य, क्योंकि भव्य है परंतु अभी तो सम्य दर्शन नहीं किया है, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक तो एक इंद्रिय में रखेगा। अभव्यों की तो बात होती है। मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक्त्व मार्गना की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का, और असंगी जीवों में जानना चाहिए। असंगी मार्गना में भी असंगी पंचेंद्रियों ने उत्कृष्ट किया था और फिर वो एक इंद्रिय में चला गया, तो उसके लिए भी असंगी के लिए उत्कृष्ट का यानी अनुत्कृष्ट का काल उतना ही होगा, अनंत काल। इतनी विशेषता है कि अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवों में, हाँ देखो, भव्य जीवों में अनुत्कृष्ट का, अचक्षुदर्शनी और भव्य जीवों में छह कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओघ के समान है, एक समय से अर्ध पुद्गल, यानी जिन्होंने एक बार उत्कृष्ट किया है, साधी शांत को लेना है, अगर साधी शांत वाला भंग नहीं लेते हैं, वो अनादि अनंत नहीं भी, अनादि शांत वाले भंग में हम असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह सकते हैं। ख्याल में, अभी जिसने श्रेणी नहीं चढ़ी या जिसने सम्यक को ही नहीं प्राप्त किया वो तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक एक इंद्रिय में भटकेगा। इसलिए जो एक समय से अर्ध पुद्गल परावर्तन बताए ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये साधी शांत वाले भंग में, ओग में भी साधी शांत का ही बताया था। 30 पेज पर देख रहे हम, अभी मार्गणों में हमने देखना शुरू किया है। देखो यहाँ उत्कृष्ट काल तो कहीं पर भी एक समय से दो समय होता है, और नारकियों में अनुत्कृष्ट देखना है तो एक समय से अपनी अपनी स्थिति, सातवें नरक में 33 सागर और हर एक में अपने अपने देखना। तीरियंचों में क्या होगा, उग के समान, नहीं नहीं उत्कृष्ट का एक समय से दो समय, और अनुत्कृष्ट का एक समय से अनंत काल, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। ऐसे कौन कौन सी मार्गणा में होगा, तो जहां पर संगी जीव भी है और जहां एक इंद्रिय भी है, तो नपुसक वेदी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी जीव में। इसमें डिफरेंस यह है कि अचक्षुदर्शनी और भव्यों में तो उत्कृष्ट बंध, हाँ साधी शांत काल अगर लेना है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन होगा अनुत्कृष्ट का, क्योंकि दसवें गुणस्थान में उसका उत्कृष्ट होगा छह कर्मों के लिए। ये हो गए ना, तो छह कर्मों के अनुत्कृष्ट का काल वो के समान है, यानी एक समय से अर्ध पुद्गल परिवर्तन। पंचेंद्रिय तीरियं चतुर्थ में, अभी यहां पंचेंद्रिय कंडीशन डाली है, जब ओ की अपेक्षा या केवल तीरियंश कहेंगे तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अनंत काल होता। अब यहां पंचेंद्रिय की जो काय स्थिति उसको हमको लेना पड़ेगा। पंचेंद्रिय तीरियंश त्रिक में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओग के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट के लिए दो उत्कृष्ट के बीच होगा तो जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले है, जिसको हम कहेंगे उसकी काय स्थिति। काय स्थिति का पूरी काय स्थिति लेना, क्योंकि उसमें तो उत्कृष्ट किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट ही रहा। ये जरूरी नहीं कि उसके संगी हुआ तो उत्कृष्ट हुआ, ये जरूरी नहीं है। अभी पंचेंद्रिय तीरियंश त्रिक में उसमें संगी असंगी दोनों मिल कर लेना, तो संगी के भी भव और असंगी के भव, त्रिक है ना तो अलग अलग लेना पड़ेगा। पंचेंद्रिय तीरियंश त्रिक में पंचेंद्रिय सामान्य से है, पंचेंद्रिय तीरियंश, फिर पंचेंद्रिय तीरियंश पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीरियंश योनिमति, योनिमति में 16 भाव में से 15 और तीन पल्ल, और वो 47 और तीन पल्ल, और ये 95 और तीन पल्ल। क्योंकि संगी में स्त्री के 8, पुरुष के 8, नपुंसक के 8, फिर अपर्याप्त, फिर 8, 8, 8, वैसे असंगी के, और संगी को लास्ट में रखकर फिर उसको भूभूमि में उत्पन्न कराना। तो संगी तीरियंश यानी पंचेंद्रिय तीरियंश ऐसा कहेंगे इन जनरल, तो 95 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, फिर पंचेंद्रिय तीरियंश पर्याप्त कहेंगे तो बीच में अपर्याप्त नहीं ले सकते। हाँ तो संगी के 24, असंगी के 24, हाँ तो 47 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले, और योनिमति में संगी के और असंगी के 8-8 भव, 16 होते हैं, तो 15 पूर्व कोटियां प्लस तीन पल्ले। पंचेंद्रिय तीरियंश त्रिक में पंचेंद्रिय तीरियंश योनिमति लास्ट 15 वाला योनिमति, मैंने पंचेंद्रिय तीरियंश योनिमति, मैंने स्त्री वेद वाले, हाँ तीन पल्ले आएगा, 15 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, मैंने वो स्त्री वेद के साथ उत्पन्न हुआ तीन पल्ले में, यह अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल देखा हमने। मैंने उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं थ्रू आउट काय स्थिति, जिसको काय स्थिति कहते हैं, पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में आठों कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध काल, जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल दो समय है, क्योंकि आयु के लिए भी उत्कृष्ट के लिए दो ही समय होता है, इसलिए उत्कृष्ट के लिए तो दोनों का समान है, अनुत्कृष्ट के लिए अलग होगा। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध काल, जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब ये कहे तो दिया अंतर्मूर्त, पर हम सात कर्मों के अनुत्कृष्ट के लिए कैसा अंतर्मूर्त लेंगे कि लगातार पंचेन्द्र तीरंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, यानी पंचेन्द्र तीरंच अपर्याप्त लगातार कितने भव हो गए, 16 भव हो गए ना, संगी के संगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, और आयु का एक ही भव में एक बार अब अंती है, बस इतना वो अंतर्मूर्त में डिफरेंस है, पर कथन दोनों के लिए सेम है। इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकों के, जिसे पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में देखा वैसा ही, क्योंकि उत्कृष्ट का ले किया दो समय, अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मूर्त, क्योंकि सात कर्मों के लिए काय स्थिति भी अंतर्मूर्त और आयु का बंध भी अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट के लिए, इसलिए कहते हैं इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकों के, यानी त्रस अपर्याप्त और स्थावर के एक एक लेकर उसके अपर्याप्त तथा सब सूक्ष्म पर्याप्तकों के जानना चाहिए। सब अपर्याप्त में सूक्ष्म भी आएंगे, परंतु सूक्ष्म पर्याप्तकों की भी काय स्थिति अंतर्मूर्त होती है। काय स्थिति समझते, लगातार उसी पर्याय में जन्म मरण करता रहे कोई जीव, हमने देखा सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त अंतर्मूर्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त अंतर्मूर्त, और सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी सूक्ष्म में रहने का काल असंख्यात लोग, मनुष्य त्रिक में पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के समान भंग है, कथन वैसा ही होगा, क्या होगा, पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्य, तो मनुष्य त्रिक कहने से क्या होगा, सामान्य मनुष्य होगा पहले, तो सामान्य मनुष्य कहने से अपर्याप्त को भी बीच में लेना, तो 24 फिर बीच में एक और फिर 24, 48 पूर्व कोटिया में से 47 पूर्व कोटिया और तीन पल्य, एक एक मिनट, उत्कृष्ट तो एक और दो समय हो गए, और अनुत्कृष्ट के लिए क्या कहेंगे, उनके काय स्थिति लेंगे, फिर से हम अंतर नहीं ले रहे, हम काल ले रहे, फिर से आप ही स्वयं से उत्तर दे रहे सबके, आपको क्या कहना है, देखो अनुत्कृष्ट का शादी शांत करना है, यानी हमको कहेंगे हाँ जिसको हम वक्तव्य को जैसे लेता था वैसे, हाँ तो कैसे लेंगे बोलो अभी, क्यों बिना आयु बंद किया होगा तो नीचे आएगा ना, श्रेणी के उतरते समय की क्या जरूरत है, देखो अनुत्कृष्ट कर रहे हैं, उतरते समय उसने अनुत्कृष्ट चालू किया, ऐसा ही ले लो ना, देव में गया ही नहीं, मिथ्या तो में भी रह सकता है ना, जा सकता है ना, आठ क्यों, सभी 48 ले लो ना, आप सब घोटाले कर रहे हैं, वो अंतर में देखना है हम, यह अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल लेना है, उसमें उत्कृष्ट काल घटित नहीं होता है, आप जो सोच रहे हैं ना वो अंतर में उसकी बात करेंगे हम, उत्कृष्ट का अंदर के लिए हम ले सकते हैं उसको, परंतु यहाँ वो बात नहीं है, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट कान हमको लगातार बंद कराना है। तो उसने एक बार भी उत्कृष्ट नहीं किया, ऐसा ही जीव लेना पड़ेगा, उसमें साधि शांत भंग नहीं ला डालना है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट कान लेना है, पूरी काय स्थिति लेनी है। मनुष्य नहीं के तो एक ही भाव होगा ना, संगी असंगी थे इसलिए 15 कह देते, यहाँ 8 ही भाव हो गए उसके। हाँ तो 7 पूर्व कोटि और 3 पल्ले। ये मनुष्य त्रिक में कथन क्या होगा कि पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 3 पल्ले। विशेषांत, यहाँ सब मार्गनाओं में 7 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल जिस प्रकार ओग से घटित करके बतलाए हैं उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। आगे भी यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, मात्र अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल सब मार्गणाओं में अलग अलग है, सो यह काल भी जहां जो काय स्थिति हो उसके अनुसार घटित कर लेना चाहिए। समझ में आई ना बात? हाँ, जिन मार्गणाओं का काल अर्धपुद्गल परिवर्तन से अधिक है उनमें उपशम श्रेणी व क्षपक श्रेणी की प्राप्ति संभव है। दोनों बातें लिए कि काल अर्धपुद्गल परिवर्तन से अधिक है और उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी की प्राप्ति भी संभव है, उनमें इन कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल ओग के समान जानने की सूचना की है, कारण स्पष्ट है। इन कर्मों के यानी 6 कर्मों का ही लेना पड़ेगा, इन कर्मों के करके सबको नहीं ले सकते। ख्याल में आती है बात? तो कौन सी मार्गणा में अनंत काल होता है? ओग में तो होता ही होता है, जैसे भव्यों में भी होगा, चक्षु दर्शन में भी होगा। वो तो पहले ही बता चुके थे वो, पर इन कर्मों के लिखा है ना उन्होंने, 6 कर्मों की बात है, तो इनके वहां राउंड करके 6 लिखो। 6 कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल ओग के समान है। इन इन के जगह इन का अर्थ होता है 6, इनको राउंड करके इनका अर्थ है 6, 6 कर्मों के अनुत्कृष्ट का, क्योंकि नहीं तो मोहनी का तो हम तो मोहनी में तो एक इंद्रिय में रहने का काल लेना था, वो अनंत काल हो जाता है, इसलिए 6 के लिए ये उनका ये कथन लागू हो जाता है, कारण स्पष्ट है। अब ये हो गया 3-6 और उसके समान जो कुछ मार्गना है। अब 31 पृष्ठ पर आते हैं, देवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओग के समान है, 1-2 समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल 1 समय है, 2 उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, वो देव इन जनरल में सर्वोत्कृष्ट स्थिति लेना, इसी प्रकार सब देवों में जानना चाहिए। उसमें क्या होगा, उत्कृष्ट का तो 1-2 समय ही होगा, अनुत्कृष्ट के लिए अपने अपना जो भव स्थिति लेनी पड़ेगी, मात्र इनमें यानी अन्य अन्य देवों में अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण जानना चाहिए, यानी जिन देवों का जो उत्कृष्ट आयु है उसको वहां समझना। एकेंद्रियों में, अभी बात केवल एकेंद्रियों में ले रहे, तो एकेंद्रियों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध कौन करेगा, तो बांदर एकेंद्रिय पर्याप्त करेंगे। एकेंद्रियों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल कितना होगा, 1-2 ही समय होगा, केवल हमको अनुत्कृष्ट में उसकी काय स्थिति या कुछ जो कुछ है वो देखना पड़ेगा। और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी सूक्ष्म में रहेगा तो कभी वो तो उत्कृष्ट करेगा ही नहीं, तो सूक्ष्म में असंख्यात लोक तक रहेगा क्योंकि उत्कृष्ट करने वाले तो बादर हो गए, तो अनुत्कृष्ट काल लगातार काल असंख्यात लोक प्रमाण। अब बादरों में अभी मार्गणा कौन सी है? बादर एक केंद्रीय। तो बादर एक केंद्रीय की काय स्थिति कितनी है याद है? अंगुल का असंख्यात। हाँ, बादरों में अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण क्या? अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट तो एक ही एक या दो समय हो ही जाता है, अनुत्कृष्ट के लिए अंगुल का असंख्यात भाग। बादर पर्याप्तको में यानी बादर एक केंद्रीय पर्याप्तको में, पहले हमने एक केंद्रीय मार्गणा ली, फिर बादरों की ली और फिर बादर एक केंद्रीय पर्याप्त को लेना। संख्यात हजार वर्ष है क्योंकि बादर एक केंद्रीय पर्याप्त को उनकी काय स्थिति संख्यात हजार वर्ष है, याद है ना? हाँ, यानी वो तो कोई भी पृथ्वी का एक अग्नि का एक जल का एक कोई भी पर्याप्त में रहा, बस इतना ही लेना है। इसी प्रकार वनस्पति कायिक जीव में जानना चाहिए कि वनस्पति कायिक, हाँ उसमें भी असंख्यात लोक हो जाएगा। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कैसे होगा? बादर निगोद भी तो उत्कृष्ट करता है, सूक्ष्म में रहने का काल लेना है तो सूक्ष्म में रहने का काल असंख्यात लोग उसके लिए भी हो जाएगा, है ना? इसी प्रकार लिखा है ना असंख्यात लोग, सब सूक्ष्म जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओग के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्योंकि योग स्थानों की संख्या ली यहाँ पर, जैसे हमने वहां पर असंख्यात लोक लेते हैं अनुभाग में, आपको याद होगा कि लौट कर फिर उतने काल के बाद या उतने योग स्थान पलट पलट कर वो नियम से होगा ही होगा, ये कहना चाहते हैं। पहले सूक्ष्म में रहने का काल असंख्यात लोक है, परंतु अनुत्कृष्ट वो इतने काल के बाद उत्कृष्ट तक फिर से दोबारा आएगा ही आएगा। देखो अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, मिला आपको 31 नंबर के पृष्ठ पर। एकेंद्रीय मार्गणा चल रही थी हमारी, पहले हमने एकेंद्रीय में लिया, हर एक में उत्कृष्ट कितना एक या दो समय, हर एक में अनुत्कृष्ट अलग अलग। तो एकेंद्रीय में जो उत्कृष्ट करने वाला कौन है? तो बादर एकेंद्रीय। तो अनुत्कृष्ट कहाँ चलेगा? तो जब सूक्ष्म में लगातार रहेगा तो वो असंख्यात लोक। अब बादर एकेंद्रीय में काय स्थिति लेना है? अंगुल का असंख्यात होगा। बादर एकेंद्रीय पर्याप्तों में संख्यात हजार, वो उसकी काय स्थिति। ऐसा ही वनस्पति कायिक में अनुत्कृष्ट का पहले उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक लेंगे क्योंकि सूक्ष्म में रहने का काल। बादर वनस्पति कायिक में वही अंगुल का असंख्यात अभाव, और बादर वनस्पति कायिक पर्याप्तकों में वही संख्यात हजार वर्ष। समझ में है ना? ये वैसा ही घटित होगा उसके भेदों में भी। अब सब सूक्ष्म जीवों में उत्कृष्ट का तो एक या दो समय होता है, अनुत्कृष्ट का काल जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा, क्योंकि इतने काल के बाद लौटकर वो उस पर्टिकुलर योग स्थान पर आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल योग स्थान कितने हैं? तो श्रेणी के असंख्यातवे भाग। यहां तक तो पढ़ा हमने विकलेंद्रियों में। बादर फिर से बादर वनस्पति का एक में कहाँ कहाँ? सूक्ष्म में देखा था, वो वनस्पति कायिक में सूक्ष्म की काय स्थिति कितनी है, हाँ तो उसमें अनुत्कृष्ट का काल कितना होगा, नहीं श्रेणी का असंख्यता का, यही तो पढ़ा अभी हमने। देखो काय स्थिति ज्यादा होने पर भी श्रेणी के असंख्यात भाग में लौटकर उस योग स्थान में पहुंचेगा। अकेले वनस्पति काय करेंगे तो बादल, जैसे हमने एक इंद्रिय में लिया था वहां असंख्यात लोक हो जाएगा ना, बादर में अंगुल का असंख्यात होगा, बादर पर्याप्तों में संख्यात हजार और सूक्ष्म में श्रेणी का असंख्यात होगा। श्रेणी का असंख्यात भाग बड़ा है क्या अंगुल बड़ा है? अरे यहाँ तो अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण तो बादर की काय स्थिति है, और फिर बादर पर्याप्त उनकी तो संख्या हजार वर्ष ही है। और जो हमने एक इंद्रिय जनरल लिया वैसे वनस्पति काय के जनरल में तो अनुत्कृष्ट का तो उत्कृष्ट काल असंख्यात लोग लिया ही था, जो सूक्ष्म में रहने का यानी सूक्ष्म निगोद में रहने का काल है। देखो सूक्ष्म और बादर मिलकर निगोद में रहने का काल कितना है उनका, ढाई पुतल पर अकेले सूक्ष्म में असंख्यात लोग, अकेले बादर में अंगुल का संख, हाँ समझ में आई बात। अब विकलेंद्रियों की बात पढ़ने जा रहे हैं। विकलेंद्रियों में विकलेंद्रिय ने द्विंद्रिय अलग लेना, तीनद्रिय अलग लेना, चतुरेंद्रिय अलग लेना, सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओघ के समान है यानी एक या दो समय है, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में किया, और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है, उनकी अपनी अपनी काय स्थिति जिसको संख्यात हजार वर्ष इतना ही कहते, इसी प्रकार इनके पर्याप्त को में जानना चाहिए क्योंकि वो करने वाले तो पर्याप्त ही होते हैं उत्कृष्ट करने वाले और ये काय स्थिति जो संख्यात हजार वर्ष वो पर्याप्त उनकी अपेक्षा ही होती है। पंचेंद्रिय द्विक और त्रस द्विक यानी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त, इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओग के समान है यानी एक या दो समय। यहां काल की बात देखने अंतर नहीं। अब अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पंचेंद्रियों में पूर्व कोटि अधिक एक हजार सागर। देखो यहां आपको अंतर नहीं देखना था उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट का अंतर देखना होता तो दो बार उपशम श्रेणी देखना पड़ता है, चल जैसे आपने मनुष्य में प्रश्न पूछा था, यहां हमको काल देखना है, काल ने उसे उत्कृष्ट किया ही नहीं और उसकी काय स्थिति ले लेना। तो अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल, अब पंचेंद्रिय द्विक और त्रस द्विक उनकी काय स्थिति लेनी है तो पंचेंद्रिय इन जनरल लिए यानी उसमें पर्याप्त पर्याप्त आ गए, पूर्व कोटि अधिक एक हजार सागर, पृथक तो शब्द रह गया है, हाँ सागरों में सहसानी पूर्व कोटि पुदत्त यानी पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर। पृथक्त्व शब्द रह गया है जो ऊपर लिखा है प्राकृत में, एक हजार सागर और पूर्व कोटि पृथक तो, और त्रस कायिकों में त्रस कायिक इन जनरल लिए उसमें पर्याप्त पर्याप्त सब आ गए, पूर्व कोटि पृथक तो अधिक दो हजार सागर, और पंचेंद्रिय अकेले लेंगे तो पूर्व कोटि पृथक तो अधिक एक हजार सागर तथा पंचेंद्रिय पर्याप्त को में सौ सागर पृथक तो, यहां एक हजार सागर नहीं लिखा, सौ सागर पृथक तो लिया, और त्रस पर्याप्त को में दो हजार सागर पूरे लिए। यानी त्रसों में तो याद रखना शुरू आसान है,
त्रस कायिक लेंगे तो पूर्व कोटि पृथक को अधिक 2000 सागर, और अकेले त्रस पर्याप्त लेंगे तो 2000 सागर। पण पंचेंद्रियों में पंचेंद्रिय अकेले लेते हैं तो पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर, और मात्र पंचेंद्रिय पर्याप्त लेंगे 100 सागर पृथक्त्व विशेषार्थ। यहाँ जिसकी जो काय स्थिति है उसके अनुसार अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल कहा है। मात्र एकेंद्रियों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध बादर एकेंद्रियों के होता है, और बादर एकेंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। इसलिए एकेंद्रियों में अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, क्योंकि जो एकेंद्रिय असंख्यात लोक प्रमाण काल तक सूक्ष्म एकेंद्रिय होकर रहते हैं उनके इतने काल तक एकेंद्रिय सामान्य की अपेक्षा नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, तथा सूक्ष्म एकेंद्रियों में यानी मार्गणा ही सूक्ष्म एकेंद्रिय की सात कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जो उत्कृष्ट काल जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है, सो इसका कारण योग स्थान के अवान्तर भेद है, यानी अन्य अन्य भेदों को प्राप्त होता रहा, फिर इतने काल के बाद लौट कर फिर अपने उत्कृष्ट को प्राप्त होगा। शेष कथन स्पष्ट ही है। अब इंद्रिय मार्गणा हो गई हमारी, और काय मार्गणा में से त्रस कायिक को भी ले लिया। अब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और निगोद जीवों में, ये दो अलग बताए, क्योंकि वनस्पति कायिक कहने से उसमें से तो साधारण और प्रत्येक दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और निगोद कहने से केवल साधारण वनस्पति कायिक को लिया जाता है। यानी लोग ऐसा दलील करते हैं जिसका अभ्यास नहीं ना करना, नहीं कैसे पढ़ना, देखो ये निगोद अलग लिया है ना, इससे वनस्पति कायिक अलग है और निगोद अलग है, तो निगोद वनस्पति कायिक नहीं है, ऐसा कहने वाले है। जैसे हमने एकेंद्रीय के दो मार्गण, एकेंद्रीय जुदे है, बादर एकेंद्रीय जुदे है सूक्ष्म एकेंद्रीय, तो बादर एकेंद्रीय क्या एकेंद्रीय नहीं है, ये भेद करने की पद्धति है उनकी। इन जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल लोक के समान है, कितना होगा, एक या दो समय, ये सर्वत्र ऐसा ही है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का अभी उनकी अपनी अपनी काय स्थिति लेनी पड़ेगी। जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, ये असंख्यात लोक तो उनकी काय स्थिति ही है। सूक्ष्म रहने का काल, और बादर और सूक्ष्म में रहने का काल, तो वो भी तो हम ले सकते हैं कि नहीं, श्रेणी के असंख्यात विभाग काल कहाँ रहता है, बादर में अंगुल का असंख्यात विभाग रहता है। पूरी काय स्थिति प्रमाण क्यों नहीं लेना, ये मेरा प्रश्न आपसे ही। यानी वहां उन्होंने सूक्ष्म में रहने के लिए सूक्ष्म के लिए तो बताया था, वैसे यहाँ पर भी उत्कृष्ट हो सकता है ना, परंतु असंख्यात लोग इतना तो हम कह सकते हैं ना। जैसे बादर में हमने अनुत्कृष्ट ही देखा उसका, लगातार सूक्ष्म में लगातार रहा तो उसको सूक्ष्म की अपेक्षा उत्कृष्ट होगा। ऐसा नियम नहीं बताए ना, पर श्रेणी के असंख्यात विभाग वो बादरों के लिए कब गिनेंगे, बादर में आने के बाद, बादर में आने के बाद लेंगे, तो बादर में आने का तो उसका काल अंगुल का असंख्यात विभाग है वहाँ श्रेणी। हाँ, यहाँ इन जनरल जब लेते हैं सबको तो उनके काय स्थिति असंख्यात लोक है, बस इतना ही ले लें। इनके बादरों में यानी बादल कायिकों में बादल लेना, पहले एकेंद्रियों में बादल लिया था तो अंगुल का संख्या का भाग कहा था। अब यहाँ इनके बादल यानी बादल पृथ्वी कायिक, बादल अग्नि कायिक, बादल वायु कायिक, बादल जल जल कायिक, वनस्पति कायिक वगैरह, इनके बादलों में कर्म स्थिति प्रमाण है, ये क्या लिया उनकी काय स्थिति, और उनके बादल पर्याप्तकों में संख्या 1000 वर्ष, जैसे पहले भी हमने देखा था। काय स्थिति यानी कर्म स्थिति यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तथा प्रत्येक शरीर जीवों का भंग, प्रत्येक शरीर वनस्पति का एक कहना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अग्नि वायु जल तो प्रत्येक ही थे, ख्याल में आई बात, उनमें तो प्रत्येक और साधारण भेद ही नहीं है। तथा प्रत्येक शरीर वनस्पति का ही डालो, जीवों का भंग बादर पृथ्वी का एक जीवों के समान है। बादर पृथ्वी का एक कितना लिया, कर्म स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि प्रत्येक शरीर में क्या होता है अन्य कायिकों के, निगोद में अलग बात है और ये प्रत्येक में अलग, अन्य बादरों के समान हो जाता है विशेषा। यहाँ पृथ्वी का एक आदि में 7 कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल, जैसे एक इनके घटित करके बतलाए हैं, उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। तथा बादर पर्याप्त निगोद जीवों में अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल संख्या 1000 वर्ष, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान कहा है, सो यह सामान्य कथन है। विशेष इतना है कि बादर पर्याप्त निगोद जीवों की उत्कृष्ट काय स्थिति अंतर्मूर्त जानना चाहिए, शेष कथन सुगम है। यानी वो निगोद पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, लगातार उन पर्याय में रहने का काल उसका अंतर्मूर्त ही होता है। यानी लगातार पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त, लगातार अपर्याप्त अपर्याप्त तो होते ही होते अंतर्मूर्त, पर पर्याप्त भी अंतर्मूर्त होते हैं। अन्य एकेंद्रिय पर्याप्त जो जीव है वो तो संख्या 1000 वर्ष होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, वैक्रिक का योगी। अभी ये मार्गणा ही ऐसी है, अभी यहाँ एक जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं अभी हम, तो मतलब अंतर्मूर्त से ज्यादा इसका काल नहीं है एक जीव के लिए। तो 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, वैक्रिक का योगी, आहार का योगी और क्रोधादि 4 कषाय वाले जीवों में 8 कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल अपर्याप्तकों के समान है। यानी उत्कृष्ट का 1 समय से 2 समय, 1 या 2 समय, और अनुत्कृष्ट का, क्योंकि ये तो उनकी मार्गणा अंतर्मूर्त की है, 1 समय से अंतर्मूर्त। काय योगी जीवों में सामान्य तिर्यंचों के समान है। काय योगी इन जनरल कहेंगे तो उत्कृष्ट का तो 1 या 2 समय होता है और अनुत्कृष्ट का अनंत काल हो जाएगा, जिसको असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहेंगे। ख्याल में आई बात, क्योंकि कायोग का कायोग है, उसमें औदारिक मिश्र भी आया, कारमान भी आया, औदारिक भी आया। औदारिक कायोगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, यानी 1 या 2 समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल 1 समय है 2 उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22000 वर्ष प्रमाण है। औदारिक कायोग का जो बड़े से बड़ा काल हमको देखना है, तो औदारिक कायोग लगातार किस जीव को ज्यादा होगा, वो तो बादर पृथ्वी का एक जो होता है ना, कुछ कम 22000 वर्ष लिया ना। अनुत्कृष्ट का जघन्य काल 1 समय, कुछ कम क्यों लिया लक्ष्मी, हाँ मिश्र, औदारिक मिश्र, शुरुआत में तो औदारिक मिश्र होगा, इसलिए आयु में से उसको कम करके बाकी काल उसका औदारिक कायोग में रहेगा, यानी औदारिक मिश्र का काल छोड़ दिया। अब औदारिक मिश्र कायोग वैकृत मिश्र का योग और आहारक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल भी एक ही समय है, क्योंकि इसमें तो अंतिम समय में यानी मिश्र का योग का अंतिम समय लेना, जो एकांत अनुवृद्धि का भी अंतिम समय है, एक ही समय के लिए वो उत्कृष्ट होगा। कार्मण का योगी और अनाहार जीवों में, फिर से औदारिक मिश्र में परिणाम किसके होगा? हाँ, तो वो लेना कि निवृत्ति अपर्याप्त का वो एकांत अनुवृद्धि वाला लेना, तो उत्कृष्ट में उसी को गिनना पड़ेगा। जब जघन्य की बात है तो हम लब्धि अपर्याप्त को गिनते थे, इसलिए एक ही समय बताया। ये समझ में आई बात? अब कार्मण का योग्य और अनाहारक जीवों में ये उत्कृष्ट करने वाला कौन होगा? संगी जीव होगा, है ना? सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, एक ही समय बताया। क्यों? देखो, पहले समय में तो उपपाद होता है, वो तो मिनिमम होता है, और दूसरे समय में एकांत अनुवृद्धि हुई, तीसरा समय लेना एकांत अनुवृद्धि का, तो कहते वो तो एक इंद्रिय में होगा तीसरा समय, और ये संगी पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट होगा। हाँ, तो दो समय वाले कार्मण का योग लेना, दूसरे समय में उत्कृष्ट लेना उसको, क्योंकि पहले समय में उपपाद योग है, दूसरे समय में एकांत अनुवृद्धि वाला है, इसलिए एक ही समय लिया। देखो, कार्मण का योग में भी अनाहारक मार्गणा भी सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल तीन समय है, क्योंकि जो मार्गणा का काल लेना है, जैसे तीन समय तक हो सकता है ना कार्मण का योग एक इंद्रिय में या सूक्ष्म एक इंद्रियों में हम देखते हैं। उसमें विग्रह गति के तीन समय हो सकते हैं, और कहीं कहीं एक समय के लिए हो सकते हैं, इसलिए एक समय से तीन समय। विशेषार्थ, औदारिक मिश्र आदि तीन मिश्र का योगों में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के उपांत समय में उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही औदारिक का योग चालू हो जाता है, इसलिए इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। कार्मण का योग और अनाहारक जीवों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध संगी जीव द्वितीय विग्रह के समय करते हैं, क्योंकि इनके इसी समय उत्कृष्ट योग संभव है, क्योंकि पहले समय में तो उपपाद होगा और दूसरे समय में एकांत अनुवृद्धि होगा, इसलिए इन दो मार्गणाओं में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओघ के समान है। अब यहाँ जो सात कर्मों का बंध कर रहा है, ऐसा लेना पड़ेगा। इसमें क्या समानता है? काल की समानता है, स्वामित्व में नहीं। हाँ, तो एक या दो समय, ओघ के समान का अर्थ क्या है? एक या दो समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल क्रम से सौ पल्ल पृथक्त्व, ये स्त्रीवेद की काय स्थिति, और सौ सागर पृथक्त्व, ये पल्ले की यानी पुरुषवेद की काय स्थिति, सौ सागर पृथक्त्व। पुरुषवेद में रहने का लगातार का काल, ये अनुत्कृष्ट के लिए लिया। कुछ प्रश्न है? नहीं, आप बारंबार अंदर की सोच रहे हैं, अंतर की बात अलग है, ये लगातार काल ही लेना है। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंद का काल ओघ के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपगत वेद में रहने का काल ही अंतर्मूर्त है। इसलिए सातों कर्मों की बात ली। मेरे स्वामी जो अलग अलग होगा, अपगत वेदी में मोहनी का नौवां गुणस्थान होगा और बाकी छह के लिए दसवां गुणस्थान होगा, पर ये कथन तो ऐसा ही होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदाय संयत और सम्यक मिथ्यादृष्टि जीवों में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उत्कृष्ट का एक या दो समय और अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मूर्त, क्योंकि ये सब मार्गणा अंतर्मूर्त वाली ही मार्गणा है। विभंग ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के, अभी ये मिथ्यादृष्टि है ना, सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, क्योंकि सातवें नरक में पर्याप्त होने पर उसको विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ है और पूरे लाइफ टाइम तक रहा, उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट ही बंद करता रहा। आभिनिबोधि ज्ञानी, ये तो विभंग ज्ञानी हो गए। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी का तो ओक के समान बताया था, क्योंकि एक या दो समय और फिर उसका जो अनुत्कृष्ट का काल अनंत काल बताया था। यहाँ आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओघ के समान है। क्या? हाँ, उत्कृष्ट का तो एक समय या दो समय होता है। देखो, अभी हमने विभंग ज्ञानी देखा, फिर दोबारा लेते उनको कुछ सुनने में तकलीफ थी ना फेसबुक पर, इसे चालू है ना। ठीक, देखते हैं विभंग ज्ञानी की बात। सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, एक या दो समय। अभी विभंग ज्ञान में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो अनुत्कृष्ट का तो एक समय सर्वत्र होता है, वैसे यहाँ पर भी होगा। उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर, सातवें नरक में पर्याप्त होने पर विभंग ज्ञानी हुआ और लाइफ टाइम में थ्रू आउट उसने अनुत्कृष्ट ही प्रदेश बंद किया, ये तो हो गया। अब आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीव में सम्यक दृष्टि जीव है, सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंद का काल ओक के समान है। अब वो छह का कहाँ होता है, मोहनी का कहाँ होता है, वो बात यहाँ नहीं है, पर उत्कृष्ट का काल कितना, एक या दो समय है। और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में होगा। और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है, क्योंकि ये सम्यक में रहने का उत्कृष्ट काल लेना, ये तो आभिनिबोधि ज्ञानी ही जनरल लिया है, इसमें 66 सागर और कुछ कम चार पूर्व कोटि लिया था। शादी हो सकता है ना, अवधि ज्ञान उसका चलता रहा। हमने देखा भवानुगामी भी होते हैं, अवधि ज्ञान जिसका भवन तक चलता रहता है, वैसे ऐसे जीव भी पाए जाते हैं। उसी की अपेक्षा लिया ना 66 सागर प्लस कुछ कम चार पूर्व कोटि। कुछ कम क्यों लिया? पहले पूर्व कोटि में सम्यक तो होने के बाद 8-20 साल के बाद लेंगे। हाँ, इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मनःपर्य ज्ञानी डबल यह हो गया क्या, दो बार यह हो गया, एक यह निकाल दो। तो मनःपर्य ज्ञानी जीवों में, मनःपर्य ज्ञान एक ही बहु में होता है, सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, एक या दो समय। बोले वो छह कर्म का स्वामित्व सूक्ष्म संप्रदाय वाला होगा, मोहिनी का नीचे होगा, काल एक या दो समय होगा, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जगन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। ये मनपरे ज्ञान में रहने का उत्कृष्ट काल जिसको काय स्थिति कहेंगे, परंतु उसका अर्थ क्या है कि वो मुनि होने के बाद ही मनपरे ज्ञान ही होगा ना, वो तो एक ही भव में लेना है, तो कुछ कम पूर्व कोटि। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, यानी कुछ कम पूर्व कोटि, ये बात इनके लिए भी लागू होगी। उत्कृष्ट के लिए एक या दो समय और अनुत्कृष्ट के लिए एक समय से कुछ कम पूर्व कोटि। फिर मार्गणा पढ़ते वो संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, वो भी कुछ कम पूर्व कोटि तक रहता है ना, और संयता संयत जीवों में जानना चाहिए। तो संयता संयत में तो तीन इंच को लेंगे, अंतर्मूर्त में प्राप्त करता है तो अनुत्कृष्ट ही रहा उसको। चक्षुदर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान भंग है। पहले उन्होंने आयु का तो सभी मार्गणाओं में समान बता चुके थे, इसलिए आयु की बात नहीं ली, सर्वत्र सात क्रमों की बात ली, क्योंकि ओग में बताया था ना आयु कर्म का ऐसा ही सभी मार्गणाओं में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? उत्कृष्ट का एक या दो समय, अनुत्कृष्ट का एक समय से अंतर्मूर्त, इसलिए किसी भी मार्गणा में आयु की बात उन्होंने नहीं ली। चक्षुदर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान है। त्रस पर्याप्तों की जो काय स्थिति है वही चक्षुदर्शनियों की है, जो 2000 सागर, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल। अब छह लेशाओं में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल दो समय, जैसे अन्यत्र सर्वत्र होता है वैसे यहाँ पर भी लेना। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रम से सादिक 33 सागर, ये कृष्ण लेशा जाते हुए, वहां जाने के पहले अंतर्मूर से कृष्ण लेशा शुरू होती है और आने पर अंतर्मूर तक रहती है, सादिक 17 सागर ये नील लेशा के लिए, सादिक 7 सागर कपोत लेशा के लिए, सादिक 2 सागर पित लेशा के लिए, सादिक 18 सागर पद्म लेशा के लिए और सादिक 33 सागर शुक्ल लेशा के लिए, यानी जाने के अंतर्मूर्त पहले और वहां से तो सम्यक में ही आता है, आने पर भी अंतर्मूर्त तक। ये तो लेशा का प्रकरण यहाँ सर्व सबसे छोटा है, अन्यत्र लेशाओं में बहुत कुछ बातें होती रहती है। हाँ, क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों में, वहां तो अभिनिबोधि किन जनरल बात की थी, यहाँ तो क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों में, क्योंकि इसकी काय स्थिति अलग होगी ना। सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, एक या दो समय, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल सादिक 33 सागर है, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया मनुष्य ने, कुछ कम पूर्व कोटि हुआ और फिर सर्वार सिद्धि 33 सागर रहा और वहां से आया और एक पूर्व कोटि का रहा, पर प्रदेश बंध तो जब क्षेपक श्रेणी चढ़ेगा ना तब तक ही हो ना, दसवें के बाद तो उसका बंध ही रुक गया है, तो दसवें तक, बाद में अंतर्मूर्त में भले मोक्ष चला गया परंतु कुछ कम हो जाएगा ना दोनों ओर, पहला भी कुछ कम पूर्व कोटि, बाद में भी कुछ कम पूर्व कोटि, और बीच में 33 सागर मिलकर क्या होगा, सादिक 33 सागर। वेदक सम्य दृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, एक या दो समय, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। देखो केवल अभिनुदिक अभिनिबोधिक था तो सादिक 66 सागर लिया था और यहाँ वेदक सम्यक में केवल 66 सागर। हाँ, और वो भी वैसे कृतकृत्य के साथ होता है तो ही पूरा 66 सागर होता है, अदरवाइज नहीं होता। उपशम सम्य दृष्टि जीवों में, अभी उपशम सम्यक्तों का काल अंतर्मूर्त है मैक्सिमम, सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओघ के समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल अंतर्मोड़ है, यानी उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, अनुत्कृष्ट ही रहा। सासाधन समय दृष्टि जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। यहाँ ओक के समान नहीं लिखा, एक समय दो समय लिख दिया। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल छह अवली प्रमाण। अनुत्कृष्ट दो पद्धति से ले सकते हैं, दो उत्कृष्ट के बीच भी, और सासाधन का काल ही एक समय हो सकता है, वहां पर भी ले सकते हैं। और उत्कृष्ट काल छह अवली प्रमाण जो सासाधन में रहने का उत्कृष्ट काल है। संगी जीवों में पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान बन गए, यानी सौ सागर पृथक पुरुष की काय स्थिति है, तो उत्कृष्ट एक या दो समय और अनुत्कृष्ट उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं तो अनुत्कृष्ट कहेंगे, सौ सागर पृथक तो। असंगी जीवों में सामान्य तीर्यंचों के समान भंग है, यानी अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन जो अनंत काल कहेंगे, और उत्कृष्ट तो एक या दो समय हो ही जाएगा। आहारक जीवों में सात कर्मों के देखो आहार पने रहने का काल हमको लेना पड़ेगा अनुत्कृष्ट में। आहारक जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का काल ओक के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, जघन्य काल एक समय दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये आहारक पने रहने की जो काय स्थिति है उसको यहाँ लेना पड़ेगा, जो अंगुल का असंख्यात भाग उसका प्रमाण मालूम है ना, असंख्यात असंख्यात कल्प काल। इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ। अभी यहाँ रुकेंगे ना हम उत्कृष्ट काल तक, जघन्य की बात कल लेंगे। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।